नमस्कार, आज हम दो ऐसे महान व्यक्तित्वों के विचारों की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने अलग अलग सदियों में इसी भारत भूमि से पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी, भगवान बुद्ध और स्वामी विवेकानंद।
हाँ जी।
हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विवेकानंद जो खुद एक महान विचारक और संत थे, बुद्ध के बारे में क्या सोचते थे, उनके मन में बुद्ध के लिए कैसी भावनाएं थीं, और इन दोनों के विचारों में क्या समानताएं थीं और क्या फर्क थे। ये एक तरह से विवेकानंद की आंखों से बुद्ध को देखना होगा।
बिल्कुल, और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, मतलब ये समझने की कोशिश है कि कैसे विवेकानंद ने बुद्ध की शिक्षाओं, खासकर उनकी करुणा और नैतिकता को वेदांत के गहरे ज्ञान के साथ मिलाकर भारत को फिर से जगाने का एक रास्ता देखा। हम देखेंगे कि करीब 25 सदियों के फासले पर जन्मे इन दो सन्यासियों के जीवन और लक्ष्य में कई हैरान करने वाली समानताएं थीं। दोनों ने दुनिया के सुखों को ठुकराया, इंसान के दुखों का हल ढूंढा और सत्य की खोज में कठोर तपस्या की। जैसे बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे, वैसे ही विवेकानंद ने कन्याकुमारी में समुद्र के बीच चट्टान पर।
सही, तो चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। देखते हैं कि विवेकानंद की नजरों में बुद्ध का क्या मकाम था और वो बौद्ध धर्म को हिंदू परंपरा के विशाल दायरे में कैसे देखते थे।
जरूर, स्वामी विवेकानंद के मन में बुद्ध के लिए सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक बहुत गहरी श्रद्धा थी। वो बुद्ध को केवल एक महान व्यक्ति या आर्य ऋषि ही नहीं मानते थे, बल्कि उन्होंने बुद्ध को दुनिया का एकमात्र पूर्ण रूप से तर्क संगत व्यक्ति कहा था।
मतलब वन एब्सोल्युटली सेन मैन।
हाँ बिल्कुल।
विवेकानंद इस बात से भी बहुत प्रभावित थे कि बुद्ध का जीवन कोरी कल्पना नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक है। इतिहास में उनके होने के ठोस सबूत मिलते हैं।
हाँ,
वो कभी कभी मजाक में कहते भी थे, हम इतिहास में सिर्फ बुद्ध और मोहम्मद के बारे में पूरी तरह यकीन से कह सकते हैं क्योंकि किस्मत से उनके दोस्त भी थे और दुश्मन भी।
हाँ, ये वाकई एक अहम बात है। विवेकानंद बुद्ध की इसी तर्कशीलता के रीजन पर उनके जोर के बहुत कायल थे। बुद्ध किसी भी तरह के चमत्कार दिखाने या आडंबर के सख्त खिलाफ थे। एक मशहूर किस्सा है कि उनके एक शिष्य, एक युवक ने सबके सामने अपनी शक्ति से हवा में से एक रत्न जड़ित प्याला उतार लिया। बुद्ध इस पर खुश नहीं हुए बल्कि उन्होंने उसे संग से निकाल दिया।
अच्छा।
उनका मानना था कि धर्म का जादूगरी या बाजीगरी से कोई लेना देना नहीं है। और उनकी विनम्रता देखिए, उन्होंने आम्रपाली, जो उस समय के समाज में एक गणिका थी, उनका निमंत्रण भी स्वीकार किया।
हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से।
बिल्कुल, और अपने जीवन के बिल्कुल अंत में उन्होंने चुंद नाम के एक लोहार, जिसे परिया यानी समाज की निचली कही जाने वाली जाति का माना जाता था, उसके घर का भोजन ग्रहण किया। ऐसा कहा जाता है कि वो जानते थे कि वो भोजन शायद उनके शरीर के लिए ठीक नहीं है और इससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार किया। वो शायद ये संदेश देना चाहते थे कि उनका आखिरी काम भी समाज के सबसे साधारण, सबसे निचले तबके के व्यक्ति से जुड़ा हो। ये कितनी बड़ी इंसानियत की मिसाल है।
और उनकी करुणा तो अद्भुत थी। एक कहानी है कि राजगीर में जब यज्ञ के लिए बकरियों को ले जाया जा रहा था, तो उन्हें बचाने के लिए बुद्ध अपना जीवन तक देने को तैयार हो गए थे।
हाँ, ये भी सुना है।
एक और कथा जो शायद प्रतीकात्मक हो, कहती है कि उन्होंने एक भूखी बागीन और उसके बच्चों को बचाने के लिए अपना शरीर ही अर्पण कर दिया था। विवेकानंद सिर्फ बुद्ध के सिद्धांतों के ही प्रशंसक नहीं थे बल्कि उनके मानवीय पक्ष को भी बहुत गहराई से महसूस करते थे।
सही।
पत्नी और बेटे राहुल को आखिरी बार देखना, विवेकानंद ऐसे पलों को याद करके कहते थे, क्या आपने कभी इन महान नायकों के दिलों के बारे में सोचा है? वे कितने महान, कितने विशाल हृदय वाले थे और फिर भी मक्खन जैसे नरम थे।
बिल्कुल, और ये गहरी श्रद्धा विवेकानंद के अपने जीवन में भी बार बार दिखती है। संन्यास लेने के फौरन बाद अप्रैल 1886 में वो अपने दो गुरु भाइयों के साथ बोध गया गए।
अच्छा।
उसी महाबोधि वृक्ष के नीचे बैठे जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था, और भावुक होकर सोचने लगे, क्या ये सचमुच मुमकिन है कि मैं उसी हवा में सांस ले रहा हूँ जिसमें कभी उन्होंने सांस ली थी? क्या मैं उसी धरती को छू रहा हूँ जिस पर कभी उनके कदम पड़े थे?
ये तो बहुत गहरा अनुभव रहा होगा।
बहुत गहरा। ये कोई मामूली बात नहीं थी उनके लिए, और देखिए, जीवन के अंत में भी अपने 39th जन्मदिन पर जनवरी 1902 में वो फिर बोधगया में ही थे।
अच्छा, अंत में भी?
हाँ, एक बार उन्हें कई बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेषों को छूने का मौका मिला था। इस अनुभव का जिक्र करते हुए वो अक्सर बहुत भावुक हो जाते थे। उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि एक बार जब किसी ने उन्हें गलती से बौद्ध समझ लिया तो उन्होंने कहा, बौद्ध, मैं तो बुद्ध के सेवकों का सेवक हूँ।
क्या बात है, विवेकानंद ने बुद्ध और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के बीच भी एक गहरा आध्यात्मिक संबंध महसूस किया।
हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
उन्होंने बुद्ध के अंतिम पलों का वर्णन करते हुए बताया था कि कैसे वो महापरिनिर्वाण के समय मृत्युशया पर लेटे हुए भी बार बार उठकर लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे और कह रहे थे कि जो भेजा गया है वो हमेशा तैयार है। ये सुनते ही विवेकानंद ने कहा, अरे ये तो मैंने रामकृष्ण परमहंस के साथ भी देखा था। मतलब दोनों ही गुरु अपने आखिरी सांस तक ज्ञान बांटने के लिए तत्पर थे।
बिल्कुल, वो समानता उन्होंने तुरंत पहचान ली।
हाँ, तो अब उस अहम मुद्दे पर आते हैं कि विवेकानंद बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के दुश्मन या उसे नष्ट करने वाले के तौर पर नहीं देखते थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि वो मानते थे कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की ही एक स्वाभाविक परिणति है, उसकी पूर्ति है। शिकागो में 1893 में जो उन्होंने विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था, उसका एक मशहूर हिस्सा है, शाक्य मुनि हिंदू धर्म को नष्ट करने नहीं आए थे, बल्कि वे हिंदू धर्म की पूर्ति करने आए थे। वो उसका तार्किक निष्कर्ष और तार्किक विकास थे।
सही,
लॉजिकल कंक्लूजन एंड लॉजिकल डेवलपमेंट।
हाँ
हाँ, वो अक्सर बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का विद्रोही बच्चा कहते थे। ऐसा बच्चा जो घर के अंदर ही पैदा हुआ, जिसने घर की कुछ बातों पर सवाल उठाए, लेकिन जिसकी जड़ें उसी घर यानी वेदों और उपनिषदों में थीं।
हाँ, विवेकानंद का तर्क ये था कि बुद्ध का मुख्य विद्रोह उस समय के बढ़ते कर्मकांडों, पुरोहितों के दबदबे और जन्म पर आधारित कठोर जाति व्यवस्था के खिलाफ था।
अच्छा,
ना दया, अहिंसा, सबके लिए प्रेम। विवेकानंद कहते थे कि ये सारे नैतिक सिद्धांत हिंदू धर्म के उपनिषदों और गीता में पहले से मौजूद थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें सबसे ऊपर रख दिया, उन्हें धर्म का केंद्र बना दिया। बुद्ध ने आम जनता को जटिल कर्मकांडों की बेड़ियों से आजाद किया और धर्म का एक सरल नैतिक रास्ता दिखाया।
तो एक तरह से सिंप्लीफिकेशन किया उन्होंने।
हाँ, कह सकते हैं। लेकिन विवेकानंद ने एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक फर्क भी बताया। बौद्ध दर्शन, खासकर शुरुआती बौद्ध दर्शन, आमतौर पर किसी स्थायी आत्मा या ईश्वर जैसी परम सत्ता को नहीं मानता।
हाँ, ये एक बड़ा अंतर है।
बिल्कुल, उसका मुख्य लक्ष्य है दुखों का अंत करना, जो इच्छाओं से पैदा होते हैं, और निर्वाण पाना। जबकि हिंदू धर्म का वेदांत दर्शन कहता है कि ये दुनिया जिसे हम भ्रम या माया समझते हैं, उसी के भीतर वो परम सत्य छुपा हुआ है, उसे पहचानना है।
अच्छा,
विवेकानंद के शब्दों में ये फर्क ऐसा है, बौद्ध धर्म ने कहा इस सब को भ्रम समझो, जबकि हिंदू धर्म ने कहा समझो कि भ्रम के भीतर ही सत्य है। ये एक सूक्ष्म लेकिन गहरा अंतर है।
विवेकानंद का एक और दिलचस्प विचार ये था कि भारत में बौद्ध धर्म कभी भी हिंदू धर्म से पूरी तरह कटकर अपने अलग मंदिरों और पुजारियों के साथ एक संगठित अलग थलग धर्म के रूप में शायद उस तरह रहा ही नहीं जैसा हम आज सोच लेते हैं।
हाँ, ये भी वो कहते थे।
ये हमेशा हिंदू धर्म के विशाल प्रवाह के भीतर ही एक शक्तिशाली सुधारवादी आंदोलन या प्रभाव की तरह था।
हाँ, एक समय ऐसा जरूर आया जब इसके प्रभाव से देश का एक बड़ा हिस्सा मठवासी हो गया।
हाँ, वो मठवासी दौर,
यानी लोग भिक्षु और भिक्षुणी बनने लगे।
और ये भी सच है कि आज भी हिंदू परंपरा में बुद्ध को विष्णु का नौवां अवतार मानकर पूजा जाता है। तो ये रिश्ता बड़ा जटिल और गहरा है।
बहुत ही जटिल।
लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। जहाँ एक तरफ विवेकानंद ने बुद्ध की इतनी प्रशंसा की, उनकी करुणा और तर्कशीलता को सिरांखों पर रखा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बौद्ध धर्म के बाद के रूपों की,
हाँ ये जरूरी है समझना,
मतलब समय के साथ उसमें जो बदलाव या बिगाड़ आए, उनकी कुछ तीखी आलोचनाएं भी की। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि आखिर भारत से बौद्ध धर्म का असर कम क्यों हो गया या उसका पतन क्यों हुआ।
जी हाँ, ये आलोचनाएं भी उनके विचारों का एक अहम हिस्सा है। उनके अलग अलग भाषणों और लेखों को देखें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं।
क्या थी वो मुख्य बातें?
पहला, विवेकानंद मानते थे कि बुद्ध तो ईश्वर या किसी परम सत्ता के बारे में सवालों को टाल देते थे या कहते थे कि इन बातों में मत उलझो, दुखों को दूर करने पर ध्यान दो। लेकिन बाद में उनके अनुयायियों ने बुद्ध की इच्छा के विरुद्ध उन्हें ही भगवान बना दिया और उनकी मूर्ति पूजा शुरू कर दी।
अच्छा, मतलब जो बुद्ध नहीं चाहते थे वही हुआ।
हाँ, एक तरह से। दूसरा, उनका मानना था कि बौद्ध धर्म का फैलाव शायद सिद्धांतों की गहराई से उतना नहीं हुआ जितना बड़े बड़े भव्य मठों, विशाल मूर्तियों और दिखावटी आडंबर भरे कर्म कांडों की वजह से हुआ। इन चीजों ने घर में होने वाले सरल वैदिक यज्ञों को पीछे धकेल दिया। तीसरा, समय के साथ ये कर्मकांड, अंधविश्वास, अजीबोगरीब मूर्ति पूजा और यहाँ तक कि वामाचार जैसी चीजों में बदल गए।
वामाचार मतलब?
वामाचार से उनका मतलब था तंत्र मंत्र से जुड़ी कुछ गुप्त और बिगड़ी हुई पूजा पद्धतियाँ, जिनमें कभी कभी नैतिक पतन भी शामिल था। उन्होंने उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर की पुरानी नक्काशियों का उदाहरण दिया था जिन्हें वो बौद्ध काल के पतन का प्रतीक मानते थे। चौथा, बुद्ध का ये विचार कि हर कोई भिक्षु या भिक्षुणी बन जाए, ये समाज के लिए अव्यवहारिक था। विवेकानंद मानते थे कि इससे समाज का संतुलन बिगड़ा और जब बहुत बड़ी संख्या में लोग मठों में रहने लगे तो उनके नैतिक स्तर में भी गिरावट आई।
हाँ, ये तो प्रैक्टिकल बात लगती है।
बिल्कुल। पांचवा, उन्होंने बुद्ध की एक भूल या सीमा बताई। वो ये कि बुद्ध शायद ये सोचते थे कि पूरी दुनिया को बिना किसी समझौते के सीधे उपनिषदों के सर्वोच्च ज्ञान तक ले जाया जा सकता है। इसकी तुलना में विवेकानंद कृष्ण को अधिक व्यवहारिक या राजनीतिक मानते थे।
अच्छा।
क्योंकि कृष्ण ने समाज के अलग अलग स्तर के लोगों के लिए उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग रास्ते बताए,
जैसे कर्म योग, भक्ति योग।
हाँ, ज्ञान योग। छठा, अहिंसा परमो धर्म। ये सिद्धांत बहुत महान है लेकिन विवेकानंद को लगता था कि शायद इसको जरूरत से ज्यादा कठोरता से लागू करने का एक नतीजा ये हुआ कि भारत की सैन्य शक्ति कमजोर हुई और देश बाहरी हमलों का आसानी से शिकार बन गया।
ये एक विवादास्पद बिंदु हो सकता है।
हाँ, ये उनकी एक सोच थी। और सातवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक आलोचना ये थी कि बौद्ध धर्म ने आगे चलकर उपनिषदों के आत्म तत्व यानी आत्मा की गहरी अवधारणा को खो दिया, जो हिंदू विचार का केंद्र है।
तो ये आलोचनाएं तो काफी गंभीर हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि विवेकानंद बौद्ध धर्म को खारिज कर रहे थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यही विवेकानंद की खासियत है। इन आलोचनाओं के बावजूद उनका अंतिम लक्ष्य टकराव या खंडन नहीं था, बल्कि संश्लेषण था, यानी मेलजोल, एकीकरण।
संश्लेषण?
हाँ, वो एक सपना देखते थे बुद्ध के महान हृदय को, यानी उनकी अपार करुणा, उनकी नैतिकता, सभी प्राणियों के लिए उनका प्रेम, वेदांत या शंकराचार्य के महान मस्तिष्क के साथ जोड़ने का, यानी वेदांत का गहरा आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म की एकता को समझना, माया के पार सत्य को देखना। उनका वो मशहूर वाक्य है, हमें चाहिए बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि।
बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि।
जी, उनका मकसद था भारत को एक ऐसे धर्म से फिर से ताकतवर बनाना जो तर्क पर आधारित हो, जिसमें गहरी आध्यात्मिकता हो, जिसमें सबके लिए करुणा भी हो और परम सत्य का ज्ञान भी हो। उन्होंने साफ साफ कहा, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के बिना नहीं रह सकता, ना ही बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के बिना। हमें ब्राह्मणों की अद्भुत बुद्धि को महान गुरु के हृदय, उनकी महान आत्मा, उनकी अद्भुत इंसान बनाने वाली शक्ति के साथ जोड़ना होगा।
मतलब वो मानते थे कि ये दोनों अलग अलग अधूरे हैं, एक के बिना दूसरा पूरा नहीं है।
बिल्कुल। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इन दोनों का अलग हो जाना, यानी भारत में करुणा और ज्ञान का अलग अलग हो जाना ही भारत के हजार साल के पतन का सबसे बड़ा कारण है।
वो ये तो बहुत बड़ा बयान है।
हाँ, इसी अलगाव की वजह से देश गुलाम हुआ, करोड़ों लोग गरीबी और अज्ञान में डूबे रहे, इसलिए इन दोनों का मेल ही भारत के भविष्य का रास्ता है।
ये तो बहुत गहरी बात है, पर यह भी जानना दिलचस्प होगा कि विवेकानंद की बुद्ध में इतनी रुचि जगी कैसे? क्या ये शुरू से ही थी या बाद में विकसित हुई?
इसके बीच तो उनकी जवानी के दिनों में ही पड़ गए थे। दो चीजों का खास असर हुआ, एक तो सर एडविन अर्नोल्ड की किताब द लाइट ऑफ एशिया, जो बुद्ध के जीवन पर थी।
हाँ, एशिया का प्रकाश।
बिल्कुल। वो किताब उस समय बहुत लोकप्रिय हुई थी, विवेकानंद ने उसे पढ़ा और वो बहुत प्रभावित हुए। दूसरी चीज थी बंगाल के एक बड़े विद्वान राजेंद्र लाल मित्रा के लेख। मित्रा जी उस समय बोधगया के महाबोधि मंदिर के जीर्णोद्धार के काम से जुड़े थे,
रेस्टोरेशन से।
हाँ, उनके लेखों ने विवेकानंद का ध्यान बुद्ध की ऐतिहासिक विरासत की तरफ खींचा।
और फिर उन्होंने सिर्फ दूसरों की लिखी किताबें ही नहीं पढ़ी बल्कि खुद भी गहरा अध्ययन किया।
हाँ, विवेकानंद कभी सुनी सुनाई बातों या सतही जानकारी से संतुष्ट नहीं होते थे। संन्यास लेने के बाद 1887 के आसपास उन्होंने अपने कुछ गुरु भाइयों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया।
मूल ग्रंथ कौन से?
उन्होंने संस्कृत में ललित विस्तर पढ़ा, जो बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उन्होंने महायान बौद्ध धर्म के बहुत गहरे दार्शनिक ग्रंथ प्रज्ञापारमिता सूत्र का भी अध्ययन किया।
अच्छा, मतलब वो जड़ तक गए।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो बुद्ध के विचारों को उनकी जड़ तक जाकर समझना चाहते थे। और जैसा हमने पहले बात की, बोधगया की उनकी यात्राएं संन्यास लेने के ठीक बाद और जीवन के बिल्कुल अंत में ये साबित करती हैं कि बुद्ध और उनके दर्शन के साथ उनका जुड़ाव सिर्फ बौद्धिक में ही था, बल्कि बहुत गहरा, भावनात्मक और जीवन भर चलने वाला था।
हाँ।
वो अपनी भारत यात्राओं के दौरान जब अकेले घूमते थे तो अक्सर बौद्ध ग्रंथ धम्मपद का एक मशहूर सूत्र याद करते थे, खग्ग विसाण कल्पो एको चरे, यानी गेंडे के सींग की तरह अकेले विचरण करो।
अकेले चलने की प्रेरणा।
हाँ, सत्य की अपनी खोज पर अकेले बिना सहारे के आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा।
तो संक्षेप में कहें, हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद के लिए बुद्ध सिर्फ इतिहास के एक महापुरुष नहीं थे, वे तर्क, करुणा, नैतिकता और आत्म साक्षात्कार की एक जीती जागती मिसाल थे।
बिल्कुल,
विवेकानंद ने बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म की ही एक महत्वपूर्ण, सुधार करने वाली और कुछ हद तक विद्रोही शाखा माना, जिसने हिंदू धर्म को नई ऊर्जा दी। लेकिन साथ ही उन्होंने समय के साथ बौद्ध धर्म में आए भटकावों और बिगड़े हुए स्वरूपों की कड़ी आलोचना भी की।
बिल्कुल सही कहा। और उनका अंतिम संदेश, उनका सपना इन दोनों महान परंपराओं की सबसे अच्छी बातों को मिलाना था। बुद्ध का विशाल हृदय, उनकी करुणा और वेदांत की गहरी प्रज्ञा, उसका ज्ञान। इसी मेल में, इसी संश्लेषण में वो भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक पुनरुत्थान की कुंजी देखते थे। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत इसी दिल और दिमाग के संगम में है।
और ये समझना आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, ये दोनों महान विचारक बुद्ध और विवेकानंद हमें यही सिखाते हैं कि बाहरी दुख तकलीफों और चुनौतियों के बीच भी अपनी भीतरी शक्ति को कैसे जगाएं, करुणा और ज्ञान के रास्ते पर कैसे चलें।
और जाते जाते हम सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। विवेकानंद ने बुद्ध के हृदय और शंकर की बुद्धि को मिलाने की बात कही थी। आज के भारत की जो अपनी सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए इस हृदय और बुद्धि के मेल का, इस संश्लेषण का आज के जमाने में क्या रूप हो सकता है?
हाँ, ये सोचने लायक बात है।
इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार।
नमस्कार।